और ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जो जानवरों के हकूक़ की भी परवाह करें, जो इस्लाम और जो रिलीजन आपको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के राइट्स बताए, हमारा क्या ख्याल है वो हमें इंसानों के राइट्स नहीं बताता होगा? राइट टू लाइफ इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट, इसके बगैर तो आप आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सकते ज़िंदगी के अंदर, ये तो बेसिक चीज़ है। तो ये सिर्फ़ एक एहसास है, ये सिर्फ़ एक जज्बा है, ये सिर्फ़ एक कॉज है जो आपको ये चीज़ समझने में आसानी देगा। आपसे मैं बात सिर्फ ये कर रही थी कि जितना आपके दिल में हक की पेनिट्रेशन होगी, उतनी आपको चीज़ें समझ आएंगी। आपने वो शेर सुना है, मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में सही, आग कहीं भी हो आग तो जलनी चाहिए, सुना है कभी? ये कौन सी आग है? इश्क की आग है। किससे करना है ये इश्क? शौहरों से इश्क की बात नहीं हो रही इस वक्त, शौहर से भी कीजिए इश्क, बहुत अच्छी बात है, आपकी इबादत है शौहर से इश्क करना। लेकिन ये जो आग है कि आग कहीं भी हो आग तो जलनी चाहिए, मकसद ये है कि दीन की तड़प और ईमान जो आपका पायलट फ्लेम है वो जलते रहना चाहिए। जितना ईमान जलता रहेगा, जितना ईमान आपके दिल में होगा, उतनी आपको बहुत सी चीज़ों की समझ आएगी। तो मकसद यही है बताने का कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस मज़हब के अंदर, इस दीन के अंदर इंसानी जान की हुर्मत रखी है, और जिस मज़हब जिस माशरे के अंदर भी इंसानी जान को वैल्यू किया जाता है, वहाँ पर बहुत से एंगल से ट्रैंक्विलिटी और सुकून आता है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हम इंसान से ज़्यादा मोहब्बत कर सकते हैं, हम इंसानियत की अपने हिसाब से ज़्यादा अच्छी खिदमत कर सकते हैं, जबकि जिस अल्लाह ने इंसान को बनाया है उससे बेहतर इंसानियत को कोई समझ सकता है? माँ से बेहतर औलाद तो कोई समझ सकता है? कोई भी नहीं समझ सकता। आप में से जितनी भी माएँ हैं, आप इस चीज़ को अपने दिल पर हाथ रख कर बता सकते हैं। और आप सोचें कभी इस बात को कि ये अल्लाह ने औरत का मुकाम इतना बुलंद क्यों रखा है? अल्लाह ने तख्लीक का मरहला मर्द के ज़िम्मे पर क्यों नहीं डाला, औरत पर क्यों डाला है? अल्लाह ने माँ का मुकाम दुनिया के हर मज़हब के अंदर बहुत एलिवेटेड रखा है, क्यों? आखिर ये माँ और औलाद का ताल्लुक इतना गहरा क्यों है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत क्यों है? अल्लाह ने इस औरत को एलिवेट किया है। अगर औरत अपने ही क्रिएटर के ख़िलाफ़ हो जाएगी, अगर औरत अपने ही खालिक से बदगुमान हो जाएगी, तो किस पर ट्रस्ट करेगी? अगर मैं अल्लाह से ही बदगुमान हो जाऊंगी, है कोई दूसरी हस्ती जिस पर मैं मुकम्मल भरोसा कर सकूं? बाज़ दफ़ा तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि इंसान अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं कर पाता। अगर अल्लाह से बदगुमान हो गए तो किस पर ट्रस्ट करेंगे? तो ये जो रिलेशनशिप है माँ और औलाद का, ये बहुत अहम है। और अल्लाह ने इस रिलेशनशिप से औरत को एम्पावरमेंट दी है। महसूस करने वाली औरत इसको महसूस कर सकती है कि आपको जो एम्पावरमेंट इस तख्लीक की वजह से मिली है, जो आपके ज़रिए अल्लाह ताला करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बचपन से अब तक आपने यही पढ़ा ना, जब आप साइंस पढ़ते थे, कि साइंस में सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, पढ़ते थे? वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म ज़िंदगी के साथ होते थे या मुर्दा डेड होते थे? आपको अगर यूग्लिना या पैरामीशियम मिलता है तो ये क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म है। क्या इनमें ज़िंदगी होती है? इनमें ज़िंदगी होती है। याद रखें, जो अल्लाह ने औलाद देने का प्रोसेस रखा है, ओवरनाइट किसी की गोद में बच्चा नहीं आ जाता, एक प्रोसेस से मामला गुजरता है, फिर अल्लाह ताला बच्चा देते हैं। अल्लाह ताला ने जो प्रोसेस, बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ने जो प्रोसेस आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट करने का रखा था, जिसके लिए अगर आप तफसीर पढ़ें तो पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कई मरहलों में हुई। पहले वो मिट्टी का एक प्रॉपर जो था उसमें यीस्ट आया, उसको रखा गया, उसके बाद उसको एक पुतले की शक्ल दी गई, फिर कई अरसे तक वो पुतला एक तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बारे में अहादीस आती हैं कि शैतान कभी नाक में से घुसता था, कभी कान में से घुसता था, इसलिए कि अंदर हॉलो था इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था अल्लाह ताला ने। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि जो प्रोसेस अल्लाह ने कई शायद सदियों में या कई सालों में आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का रखा, अल्लाह ने उसी को कंसाइज करके अब दुनिया के इंसानों के अंदर एक ट्रांजिशनरी पीरियड बना दिया है। आवर ट्रांजिशनरी पीरियड 9 महीने का है जिसमें माँ के वूम में बच्चा ग्रो करता है. ओवरनाइट किसी को बच्चा नहीं मिल जाता, एक प्रोसेस से गुजर कर इंसान बनता है. आदम अलैहिस्सलाम को कई सदियों पहले जो बनाया गया, तो आदम अलैहिस्सलाम का फिज़िकल वजूद जो था, जो उनका फिज़िकल बीइंग था, जिसको आप हैवानी वजूद कहते हैं, वो बना दिया गया था. और उसके बाद उनमें रूह को फूंका गया. और ये जो फिज़िकल बीइंग होता है, इसमें जान होती है. अगर आपके सामने अमीबा आए और वो पानी में आपको माइक्रोस्कोप के ज़रिए यहाँ से वहाँ मूव करता हुआ नज़र आए, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक सेल के ऊपर इसकी पूरी डिपेंडेंसी होती है, क्या आप इसको ज़िंदा कहेंगी या मुर्दा कहेंगी? अगर ये मूव कर रहा है अंडर माइक्रोस्कोप, आप इसको ज़िंदा कहेंगी. अगर सिंगल सेल क्रिएचर को आप कह सकती हैं कि ये ज़िंदा है, तो वो जो पहला सिंगल सेल बनता है एक मर्द की तरफ से स्पर्म और औरत की तरफ से ओवम आने के बाद, जिसको जाइगोट बोलते हैं, उसमें डीएनए मौजूद होता है, वो सिंगल सेल होता है, उसमें ज़िंदगी होती है. याद रखें, इंसान दो चीज़ों का कंपोनेंट है. जब तक हम अपनी सेक्युलर नॉलेज को अपनी सेक्रेट नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज के साथ अटैच नहीं करेंगे, हम इस दुनिया में कंफ्यूज ही रहेंगे और कंफ्यूज ही चले जाएंगे. हम इस दुनिया को जैसा पुरसकून बनाना चाह रहे हैं, हम वैसा पुरसकून बना नहीं सकेंगे. इसलिए कि जिस अल्लाह ने हमको ये सेक्रेट नॉलेज दी है, सेक्युलर भी उसी ने दी है. सारे उलूम आदम अलैहिस्सलाम को जो सिखाए गए थे, जो आप पढ़ती आई हैं शुरू से, कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखाए, वो क्या थे चीज़ों के नाम? वो एक्सफोलिएट होते होते अब इंसानों के अंदर बायोलॉजी बन गया, केमिस्ट्री बन गया, फिज़िक्स बन गया, जियोलॉजी बन गया, साइकोलॉजी बन गया, फ़िलासफ़ी बन गया. अल्लाह ने ही वो इल्म सिखाए थे जो वक्त के साथ, जनरेशन्स के साथ जो हैं वो इंसानों के सामने वाज़े होते जा रहे हैं. यही अल्लाह है जिसने आपको और मुझे दुनिया का इल्म सिखाया. यही अल्लाह है जिसने मुझे और आपको ये आखरत का इल्म और दुनिया गुजारने का तरीका सीक्रेट नॉलेज की शक्ल में दे दिया है. जब तक हम इन दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे, हम कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे और हम अपनी इस प्लानट अर्थ के ऊपर अपने आने वाली नस्लों के लिए कोई बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स छोड़ कर नहीं जाएंगे. हर माँ बाप, हर समझदार माँ बाप अपनी औलाद के लिए सर्टन सक्सेस के माइलस्टोन्स कवर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? आप चाहती हैं कि आपका बच्चा एक सर्टन स्टेबिलिटी पर आ जाए? माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा जो है वो एक करियर अडॉप्ट कर ले, ताकि आने वाली ज़िंदगी में वो अनसर्टनिटी का टू सम एक्सटेंट शिकार ना हो. सब माँ बाप चाहते हैं. तो मैं और आप अपने बच्चों को कैसी वल्नरेबल अर्थ के ऊपर छोड़कर जा रहे हैं जिसमें इंसान की ही कोई वैल्यू नहीं है? कतरा कतरा दरिया बनता है. अल्लाह ने जिस मखलूक को, जिसे इंसान कहते हैं, उसको बनाना शुरू करना होता है, वो उस जाइगोट से उसकी इब्तदा हो जाती है और वो सिंगल सेल क्रिएचर होता है. आपको कुरान से कई इंस्पिरेशंस मिल जाएंगी जो आपको बताएंगी कि इंसानी जान की हुर्मत कितनी ज़्यादा है. और इंसानी जान की हुर्मत, चाहे आपके सामने जीता जागता इंसान मौजूद हो, चाहे वो इंसान जो अभी माँ के वूम में मौजूद है, ट्रांजिशनरी पीरियड के अंदर है. अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया था, तो आदम अलैहिस्सलाम एक फ़िज़िकल बीइंग के तौर पर थे, उनमें लाइफ थी. अभी आपको बता दिया, अमीबा हो या पैरामीजियम हो, उसमें ज़िंदगी होती है, उसमें रूह तो नहीं होती. अमीबा में रूह होती है? रूह तो नहीं होती, इसलिए उसमें लाइफ होती है. साइंटिफिकली उसमें लाइफ मौजूद है डीएनए की वजह से, लेकिन उसमें रूह नहीं है, स्पिरिट नहीं है उसके अंदर. इंसान दो चीज़ों का कंपोनेंट है, एक उसका फिज़िकल बीइंग है, एक उसका स्पिरिचुअल बीइंग है. लाइफ फिज़िकल बीइंग में होती है. जो आपका स्पिरिचुअल बीइंग है, वो तो आपका नफ्स क्रिएट होगा. उससे आपको चीज़ें समझ आएंगी. क्या आप किसी इंसान की रूह को कत्ल कर सकते हैं? जवाब दें. आप किसी इंसान की रूह को स्टैप करके मार नहीं सकते हैं. जो रूह एक दफ़ा बन गई, जो अल्लाह ताला ने इंसानों को ज़मीन पे भेजने से पहले तमाम रूहें बना दी थीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस आखिरी इंसान तक की रूह जिसने इस दुनिया में क़यामत से पहले आना है, अल्लाह ने ये सारी रूहें बना दी थीं. स्कॉलर्स कहते हैं कि जो रूह एक दफ़ा बन गई, अब वो ख़त्म नहीं होगी. वो रूहें बनी अपने टाइम पीरियड के हिसाब से इस दुनिया में आती हैं, अल्लाह का असाइन किया हुआ वक्त इस दुनिया पे, इस प्लैनेट अर्थ पर गुजारती हैं, उसके बाद उनको मौत आ जाती है दुनिया की। लेकिन क्या रूह ख़त्म हो जाती है? रूह तो नहीं ख़त्म होती, रूह तो परवास कर जाती है। या उसका मुकाम इल्लीयीन में होता है, आला मुकाम रूहों के अंदर, या उसका मुकाम सिज्जीन में होता है, वो जो गुनाहगारों की रूहें रखने की जगह है। उसके बाद हिसाब किताब होगा और जो नेक लोग होंगे उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और जो गुनाहगार होंगे उनको जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो रूह तो नहीं ख़त्म होती। आप किसी इंसान को मारते हैं, आप उसका फिज़िकल बीइंग मारते हैं, आप उसकी रूह नहीं मारते हैं। रूह को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, रूह को कोई किसी तरह से प्रूफ नहीं कर सकता, रूह को कोई मार नहीं सकता। तो इस अबॉर्शन डिबेट में थोड़ी देर के लिए रूह को एक तरफ करें, तब आपको इंसानी जान की वैल्यू समझ आएगी। अल्लाह ने सूरह मायदा की आयत नंबर 32 में फरमाया, काफ़ी लंबी आयत है जो बनी इसराइल से एड्रेस करती है और मुसलमानों को इन जनरल अहकाम देती है कुरान के ज़रिए। अल्लाह ने कहा, अन्नहु मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्स,